ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने कहा, जाति आधारित गणना की विस्तृत रिपोर्ट 1.5 महीने बाद जारी की जाएगी। विधानमंडल में भी पेश होगी रिपोर्ट। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज नई दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, गया, बक्सर, अररिया और गोपालगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय गणना पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस अधिक आबादी के आधार पर हक की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है।
ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक, और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? आबादी किसकी ज्यादा है? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है।
श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर राज्य, हर जिला और हर गांव विकसित होगा। प्रदेश में जातीय गणना की विस्तृत रिपोर्ट 1.5 महीने बाद जारी की जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी शामिल होंगे। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर पटना में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी रिपोर्ट विधानमंडल में भी पेश की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि जाति सर्वेक्षण विस्तृत और व्यापक प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग और वंचित वर्ग का उत्थान करना है। श्री कुमार ने कहा कि यह नीति निर्माण और जन कल्याण योजनाओं के लिए दृष्टि प्रदान करेगा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के नेता तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य में जाति सर्वेक्षण की अनुमति देने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक टाल दी थी। कृषि विभाग ने अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के किसानों को भी कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि प्रदेश में ईबीसी किसानों की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए कृषि यांत्रिक योजना के तहत इन किसानों के लिए अनुदान प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 20,000 रूपये तक के कृषि यंत्रों पर 3 वर्ष पुरानी रसीद के आधार पर भी योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए एलपीसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी योजना के कारण उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में श्री मोदी की लोकप्रियता में 78% की वृद्धि हुई है। क्योंकि वो हमेशा अपनी बात के प्रति सच्चे रहते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाएं हमेशा देश के गरीबों खासकर महिलाओं के हित में है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज नई दिल्ली की सीबीआई अदालत में पेश होंगे। इस मामले में सीबीआई ने पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। इन सभी का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत इस मामले में आरोप गठित करेगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने मई 2022 में लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था। प्रदेश में न्यायिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 14 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य न्यायिक सेवा के दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित निजी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की सुविधा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR News पटना पर भी सुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाकर 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इस कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को औपचारिक आर्थिक दायरे में शामिल करने और विकास के नए अवसर प्रदान करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इस कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करने का रहा है। मंत्रालय ने इस वर्ष 1 जुलाई से इस कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत करीब 64,000 लोगों ने अपने अंग दान करने का संकल्प लिया है। यह अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। श्री मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भव अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने बताया कि लगभग 2,70,000 स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए, 1,61,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अररिया और गोपालगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, बक्सर, सीवान, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं शिवहर जिलों के एक या दो स्थानों में होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के चिनारी में सबसे अधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश से कैमूर जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कर्मनासा, दुर्गावती और स्वरा जैसी मौसमी नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपात टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। राज्य में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू पीड़ितों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 199 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 68 नए मामले मिले हैं, भागलपुर में 16, सारण में 15 और भोजपुर में 13 नए मामले मिले। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वरुण प्रभा ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आसपास सफाई बना के रखना। अगर साफ सफाई है तो जो मच्छर हैं, जो मस्किटोज हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। उसके अलावा कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। उसके अलावा घरों में हमें जो खिड़कियां होती है, जो विंडोज होती है, उन पे स्क्रीन या फिर नेट लगवा के रखना चाहिए ताकि जो मच्छर है उसकी एंट्री घर में कम से कम हो। बच्चों का स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो मच्छरदानी होती है यानी कि जो मस्किटो नेट होता है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं और आपको लगता है कि डेंगू का इन्फेक्शन होने का डर है, हमें अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए।
पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति और निगम प्रशासन के बीच कल हुई वार्ता में अधिकतर मामलों में सहमति बन गई है। इधर पटना के शहरी इलाकों में पिछले 13 दिनों से जारी हड़ताल के कारण गली मोहल्लों में कचरे के ढेर से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हांगचो एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है भारतीय खिलाड़ियों का। खेलों के 10वें दिन कल भारत को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक मिले हैं। पदक तालिका में भारत 15 स्वर्ण, 26 रजत और 28 कांस्य पदकों के साथ कुल 69 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा अपना स्वर्णिम पदक सुनिश्चित करने के लिए उतरेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से जुड़ी खबर को हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी दलों की राय से राज्य के हित में करेंगे काम। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बैठक में मुखर रही आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात। सर्वदलीय बैठक में भाजपा और हमने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में त्रुटि को दूर करने की व्यवस्था पर रखी अपनी बात। जातिगत गणना पर प्रधानमंत्री के बयान को आज अखबार ने सुर्खी बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे लिए गरीबी सबसे बड़ी आबादी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। प्रभात खबर का शीर्षक है, 700 नोटरी पब्लिक की नियुक्ति जल्द, चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में। राष्ट्रीय सहारा ने एशियन गेम्स की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, 10वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड। पदक तालिका में भारत 15 गोल्ड, 26 रजत और 28 रजत पदक के साथ चौथे स्थान पर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने कहा, जातीय आधारित गणना की विस्तृत रिपोर्ट 1.5 महीने बाद जारी की जाएगी, विधानमंडल में भी पेश होगी रिपोर्ट। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज नई दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, गया, बक्सर, अररिया और गोपालगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।